सुजीत कुमार की आवाज में राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, जो कि अध्याय दो है, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एलवुड के अनुसार जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्म दर्शी यंत्र का है, और ज्योतिष विज्ञान के लिए जो उपयोग और महत्व दूरदर्शक यंत्र का है, वही उपयोग और महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मूल रूप में दो पद्धतियां होती हैं। पहला, आगमनात्मक या व्याप्तिमूलक पद्धतियां, इंडक्टिव मेथड, एंड दूसरा, निगमनात्मक पद्धतियां। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत कतिपय ऐसे तथ्यों से अध्ययन प्रारंभ किया जाता है जिनका स्वरूप या तो ऐतिहासिक होता है या जो प्रयोग, तुलना या निरीक्षण के परिणाम होते हैं, और इन तथ्यों के आधार पर परिणाम निकाले जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत हम विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के सत्य होने की कल्पना पहले ही कर ली जाती है, और इन सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस पद्धति में हम सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस प्रकार की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन के प्रारंभिक काल में निगमनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता था, लेकिन वैज्ञानिक प्रभाव के कारण वर्तमान समय में आगमनात्मक पद्धति का अधिक प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान की पद्धतियों की व्याख्या करने वाले लेखकों में अगस्ट काम्टे, मिल ब्लंट शली, ब्राइस तथा आधुनिक फ्रांसीसी विद्वान दसलेंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। काम्टे ने राजनीतिक अनुसंधान की तीन पद्धतियों, पर्यवेक्षणात्मक, प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक मानी है। मिल ने चार पद्धतियों का उल्लेख किया है। पहला, रासायनिक या प्रयोगात्मक, केमिकल और एक्सपेरिमेंटल। दूसरा, अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट। तीसरा, भौतिक या निष्कर्षात्मक, द फिजिकल कॉन्क्रीट डिडक्टिव। तथा चौथा, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। मिल ने इनमें से प्रथम दो को त्रुटिपूर्ण और अंतिम दो को उपयुक्त माना है। लॉर्ड ब्राइस ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शासन प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन बहुत निकट से ही किया जाना चाहिए। आधुनिक फ्रांसीसी विद्वान दसलेंद्र ने छह पद्धतियां मानी हैं। पहला, सामाजिक, द सोशियोलॉजिकल। दूसरा, तुलनात्मक, द कंपेरेटिव। तीसरा, सैद्धांतिक, द डोमेस्टिक। चौथा, न्याय विभाजनात्मक, द ज्यूरिडिकल। पांचवा, सहज बुद्धि से संबंधित, द मेथड ऑफ द गुड सेंस, द ऐतिहासिक, द हिस्टोरिकल। इस संबंध में विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर हम निम्नलिखित वर्णन कर सकते हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, ट्रेडिशनल मेथड्स। पहला, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऑब्जर्वेशनल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का निकटता से अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग तो प्राकृतिक विज्ञानों में ही किया जाता है, लेकिन वास्तविकता पर आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में भी इस पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। प्रेसिडेंट लॉवेल ने राजनीति विज्ञान में इस पद्धति की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं, वरन राजनीतिक जीवन संबंधी बाहरी विश्व है। इस पद्धति का जेम्स ब्राइस ने अधिक प्रयोग किया है, और उन्होंने अपने महान ग्रंथ अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना प्रमुख रूप से इसी पद्धति के आधार पर की है। मोंटेस्क्यू ने भी अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना इसी पद्धति के आधार पर की है। वेब दंपति ने रूस का भ्रमण किया और रूसी राजनीति, प्रशासन एवं आर्थिक संगठन को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सोवियत कम्युनिज्म की रचना की। इसी प्रकार जॉन गंथर ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर इनसाइड एशिया, इनसाइड अफ्रीका, इनसाइड यूरोप आदि पुस्तकों के रूप में अपने पर्यवेक्षणात्मक अनुभवों को लेखबद्ध किया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में इस पद्धति का व्यापक प्रयोग किया गया है। इस पद्धति का विशेष गुण यह है कि स्वयं के पर्यवेक्षण और चिंतन पर निर्भर होने के कारण यह सत्य की प्राप्ति के सर्वप्रथम साधन के रूप में कार्य करती है। इस पद्धति के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन का वास्तविकता से सीधा संबंध होता है, और इसके ऊपर भावशून्य या सिद्धांतवादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। सीमाएं, अपनी समस्त उपयोगिता के बावजूद इस पद्धति को बहुत अधिक सीमित क्षेत्र में ही अपनाया जा सकता है। प्रथमतः, विभिन्न देशों में स्वयं जाकर अध्ययन करने के अवसर सभी राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं को नहीं वरन विशेष साधन संपन्न विचारकों को ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार का यह सर्वसुलभ पद्धति नहीं है। द्वितीय, इस पद्धति की उपयोगिता इस तथ्य से सीमित हो जाती है कि इसके आधार पर किसी संस्था के भूत या भविष्य का ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य पद्धतियों का भी साथ साथ प्रयोग न किया जाए। सावधानियां, इस पद्धति को अपनाते हुए समय निम्नलिखित बातों का आवश्यक रूप से दृष्टि में रखा जाना चाहिए। पहला, अध्ययनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका अध्ययन वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हो, सामान्य अनुमानों पर नहीं। सामान्य अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के कारण ही मोंटेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान के वास्तविक रूप को समझने में भूल की थी और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता बतला दिया था। दूसरा, अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पक्षपात रहित तथा उदार होना चाहिए तथा उसे अपने व्यक्तित्व को अपलोकन से अलग रखकर निष्पक्षतापूर्वक निष्कर्ष निकालने चाहिए। अपनी रुचि की चीजें देख लेने और अपनी रुचि के विपरीत चीजों की ओर से आंखें बंद कर लेने की आशंका सदैव ही रही है। इसी त्रुटि के कारण विभिन्न व्यक्तियों तथा साम्यवादी समाज और राज्य के संबंध में परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं। तीसरा, अवलोकन एकांगी तथा क्षणिक नहीं होना चाहिए। जीवन के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है और इस संपूर्ण चक्र को ध्यान में रखकर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। पहले सभी संबंधित और जरूरी तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए और इसके उपरांत पैनी तथा सूझबूझ पूर्ण दृष्टि के आधार पर ही इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस संबंध में ब्राइस ने लिखा है कि विषय संबंधी सत्य खोजो तथा उसका निश्चय करो। उसके विषय में स्पष्ट हो जाओ, उसे इतना उभारो कि वह एक नग की भांति चमकने और जगमगाने लगे। फिर अन्य सत्यों में उनका संबंध स्थापित करो, विद्यमान तथ्यों के प्रसंग में उनकी परीक्षा करो, क्योंकि इसी में उनकी उपयोगिता और महत्व निहित है। अकेला वह व्यर्थ है, इसलिए उसे हार में हीरों का स्थान दो तथा उसे अपने भवन का सामान्य पत्थर ही नहीं वरन उसकी आधारशिला बताओ। दूसरा, ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, वरन वे विकास का परिणाम होती हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और उसके अतीत से परिचित होकर भी उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ऐतिहासिक पद्धति का बहुत अधिक महत्व है। इस संबंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है, इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है वरन यह भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीति विज्ञान की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। ऐतिहासिक पद्धति की इस उपयोगिता के कारण ही अरस्तु इसे समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है और लॉस्की, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कॉम्टे, हार्वर्ड, स्पेंसर और मार्गन सभी ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है। यह पद्धति हमें अतीत में झांकने में सहायता प्रदान करती है और अतीत के इस आलोक में हम भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लॉस्की इस अर्थ में कहते हैं कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है। यह पद्धति हमें बतलाती है कि राजनीतिक घटनाएं असंबद्ध रूप से घटित नहीं होती, वरन एक न टूटने वाली श्रृंखला के रूप में आती है। यह महान राजनीतिक आंदोलन और विचारों की खोज करती है, पूर्व ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की खोज करती है एवं वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की प्रामाणिकता को परीक्षण करने के योग्य बनाती है। इस संबंध में जीर्मन कहते हैं कि यह भूत का संपर्क ही है जो मनुष्यों और समाजों को वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है। वर्तमान जितना ही भौतिक चिंताओं और जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जाएगा, उतनी ही भूत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। सीमाएं, किंतु ऐतिहासिक पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा इसी कारण सिजवेक, ब्राइस, बर्कर और सीले इस पद्धति को गौण स्थान ही प्रदान करने के पक्ष में हैं। प्रथमतः उनके अनुसार प्रत्येक समस्या कुछ विशेष तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है और प्रत्येक समस्या का हल उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही निकाला जा सकता है। इसलिए ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान एवं भविष्य की सभी समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं हो सकती। द्वितीयतः, इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र होता है और इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों या महत्वों पर विचार नहीं किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है जिसका कार्य राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक मूल्यों का परीक्षण करना है। अतः इस क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। सावधानियां, यदि निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं तो ऐतिहासिक पद्धति का अच्छा प्रयोग हो सकता है। पहला, ऊपरी समानताओं और सादृश्यों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रूस और चीन की साम्यवादी क्रांति में समानता के बावजूद
मौलिक अंतर है। दूसरा, अपने पूर्वकल्पित विचारों का इतिहास द्वारा समर्थन ढूंढने के प्रलोभन से बचना चाहिए। अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक समस्या का हल अतीत के आधार पर ही करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई बात पहले एक खास ढंग से हो चुकी है तो उसका तात्पर्य यही नहीं कि वर्तमान में भी उसी ढंग से होगी। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है वाली कहावत अर्ध सत्य ही है और इसके अनेक अपवाद होते हैं। इस संबंध में गेटल ने कहा है कि इस प्रणाली का प्रयोग करते समय सामग्री छांट और विश्लेषण की ओर तथा पक्षपात के त्याग की ओर ध्यान देना चाहिए। एकत्रित किए गए तथ्य ठीक होने चाहिए तथा उनके ऊपर आधारित युक्ति साफ और तर्कसंगत होनी चाहिए। तीसरा, तुलनात्मक पद्धति, कंपेरेटिव मेथड। तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने किया था और वर्तमान समय में मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन, डी डॉकविल, ब्राइस आदि विद्वानों ने इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। कहा जाता है कि अरस्तू ने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनकी तुलना के बाद क्रांति के कारणों की विवेचना की तथा सर्वोत्तम विधान के संबंध में निष्कर्ष निकाले। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसी संविधान की ब्रिटिश संविधान से तुलना करते हुए अपने शक्ति पृथककरण के प्रसिद्ध सिद्धांत की रचना की और ब्राइस ने भी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक सामान्य परिस्थितियों का वर्णन किया। डॉक्टर हरमन फाइनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स की रचना इस पद्धति के आधार पर की है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस पद्धति से बहुत सहायता मिली थी। उन्होंने विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं तथा का तुलनात्मक अध्ययन कर अपने निष्कर्षों को भारतीय संविधान में संजो दिया। इस दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता असंदिग्ध है। सीमाएं, किंतु तुलनात्मक पद्धति की भी सीमाएं हैं और कई बार भ्रमवश असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि तुलना करते समय संबंधित सामाजिक और आर्थिक वातावरण तथा मानव स्वभाव का ध्यान न रखा जाए तो तुलना के परिणाम स्वरूप भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू के साथ वस्तुतः ऐसा ही उसके द्वारा इंग्लैंड के नागरिकों की स्वतंत्रता का कारण शक्ति विभाजन सिद्धांत बतलाया गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि इंग्लैंड में शक्ति विभाजन सिद्धांत को कभी भी नहीं अपनाया गया। इन्हीं कारणों से गवर्नर इसी प्रणाली की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि तुलनात्मक प्रणाली से व्यवहारिक रूप में गलती होने का भय है, क्योंकि सामान्य नियमों की खोज करने का प्रयत्न करते हुए विभिन्न परिस्थितियों जैसे लोगों का स्वभाव और प्रतिभा, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, नैतिक तथा वैधानिक स्तर, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा अनुभव आदि के भेद का भुला देने की भूल की जा सकती है। इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए निम्न बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, तुलनात्मक पद्धति को अपनाते समय समानताओं के साथ साथ असमानताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और परिणाम निकालने के में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत और इंग्लैंड के प्रजातंत्रों की तुलना करते हुए भारत में जातिवाद, धार्मिक भिन्नता तथा आर्थिक पिछड़ेपन आदि बातों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, अध्ययनकर्ता को मानव स्वभाव एवं समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किन्हीं विशेष संस्थाओं का स्वरूप और सफलता इन पर ही निर्भर करती है। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसे राज्यों और संस्थाओं को ही चुना जाना चाहिए जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही हो तथा जिनमें अधिक अंतर न हो। चौथा, तुलनात्मक अध्ययन निष्पक्षता एवं तटस्थ वैज्ञानिक भावना के आधार पर किया जाना चाहिए। चौथा, प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव होने के कारण इस विषय में प्रयोग के लिए वैसा स्थान नहीं है जैसा कि पदार्थ विज्ञानों में होता है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में प्रयोग किए ही जाते हैं और इस विषय के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोगों की एक विशिष्ट प्रकृति होती है। इसे लक्ष्य करते हुए गिलक्राइस्ट ने कहा है कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में जो प्रयोग विधि है, यह यद्यपि राजनीति शास्त्र में पूरी तरह लागू नहीं हो सकती, किंतु फिर भी राजनीति शास्त्र में अपने विशिष्ट प्रकार के प्रयोगों के लिए काफी गुंजाइश है। यदि प्रयोग शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में निरंतर रूप से प्रयोग होते रहते हैं। राजनीतिक वैज्ञानिक के लिए विश्व एक प्रयोगशाला ही है। राजनीतिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं वे राजनीतिक विज्ञान के प्रयोग ही हैं। कॉम्टे के शब्दों में राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही होता है। इसी प्रकार गिलक्रिस्ट ने कहा है कि शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीतिक विज्ञान में एक ही प्रयोग होता है। प्रोफेसर मैरियम का तो विचार है कि राज्य के पास अन्य किसी भी संस्था की अपेक्षा प्रयोग के लिए बहुत अधिक सामग्री होती है। सेना, विद्यालय, सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक संस्थाओं की एक लंबी कतार प्रत्यक्ष रूप में उसके नियंत्रण में होती है और उसकी इच्छा अनुसार प्रयोग के कार्य में लाई जा सकती है। राजनीति के क्षेत्र में किए गए इस प्रकार के प्रयोगों के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। 1919 के अंतिम भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसकी असफलता को देखकर 1935 के कानून द्वारा उनका अंत कर दिया गया। इसी प्रकार अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम भारतीय संघ के राजस्थान राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को अपनाया गया, जिसकी सफलता को देखकर भारतीय संघ के अन्य राज्यों द्वारा भी इसे अपना लिया गया। फ्रांस में जब संसदीय शासन के परिणाम स्वरूप निरंतर राजनीतिक अस्थिरता रही तो इसमें अध्यक्षात्मक शासन से कुछ तत्व मिलकर एक प्रयोग किया गया जो बहुत अधिक सीमा तक सफल रहा। वर्तमान समय में भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास किया जा रहा है। सीमाएं राजनीतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाया तो जाता है, लेकिन इस पद्धति को अपनाने की निम्नलिखित सीमाएं हैं। सर्वप्रथम पदार्थ विज्ञानों में प्रयोगकर्ता का परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह मनचाही परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में देशकाल की परिस्थितियों का इच्छानुसार निर्धारण संभव नहीं है। अब प्रयोगकर्ता को पूर्व निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य करना होता है। द्वितीयतः राजनीति विज्ञान में पूर्णतया प्रमाणिक मापन व्यवस्था का भी अभाव है। मानवीय प्रकृति की परिवर्तनशीलता के कारण पूर्णतया प्रमाणिक मापक व्यवस्था को अपनाना संभव नहीं है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि जिन पदार्थों से रसायन शास्त्री का पाला पड़ता है वे सदैव एक से होते हैं, उनका तोला या मापा जा सकता है, जबकि मानवीय प्रकृति को केवल वर्णित किया जा सकता है। हम तापमान, नमी और हवा के दबाव को माप सकते हैं, लेकिन एक भीड़ के भावों में कितनी गर्मी रही होगी वह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक संकट काल में मंत्रिमंडल के मत की सुनवाई होगी, लेकिन कितनी यह कहना कठिन है। मत, संवेग और अन्य बातें जो राजनीति को प्रभावित करती है गणना करके योग्य नहीं है। तृतीयतः पदार्थ विज्ञानों में प्रयोग को उस समय तक दोहराया जा सकता है जब तक कि अंतिम परिणाम न निकल जाए, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में प्रयोगों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। सावधानियां, प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाते समय निम्न बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, प्रयोगकर्ता के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण तथा भावना को प्रयोग से अलग रखा जाना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाने की आशंका रहती है। दूसरा, प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग से संबंधित विशेष परिस्थितियों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रयोग का स्विट्जरलैंड में सफल होना और अमरीका में असफल होना प्रयोग की सफलता में परिस्थितियों की प्रभावशीलता का ही प्रमाण है। पांचवा, दार्शनिक पद्धति, फिलोसफिकल मेथड, उपर्युक्त पद्धतियां आगमनात्मक है और उनमें तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, किंतु दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक है और उसके अंतर्गत तर्क एवं कल्पना का अधिक आश्रय लिया जाता है। उपर्युक्त सभी पद्धतियां विशेष अवस्थाओं के आधार पर अपने अपने नियमों की प्रतिष्ठा करती है, परंतु दार्शनिक पद्धति अपने प्रतिष्ठित नियमों के प्रकाश में विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। दार्शनिक पद्धति राज्य के लक्षण अथवा उद्देश्य के संबंध में कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं को लेकर चलती है, इसके बाद निश्चित करती है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किस प्रकार के कानून अधिक उपयुक्त होंगे तथा कैसी संस्थाएं अधिक उचित होंगी। तत्पश्चात ही इस आदर्श स्थिति के प्रकाश में विद्यमान कानून और संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है। राजनीतिक चिंतन में प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मिल, सिजविक, ब्रेडले, बोसांको आदि के द्वारा इस पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाया गया है। प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया तो इस पद्धति के अनुपम उदाहरण है। प्लेटो द्वारा दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की कल्पना, मूर के स्वर्गीय राज्य की धारणा, लॉक के प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार की धारणा और रूसो द्वारा सामान्य इच्छा की धारणा का प्रतिपादन दार्शनिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। दार्शनिक पद्धति की त्रुटि एवं समस्याएं, सीमाएं, दार्शनिक पद्धति की सबसे बड़ी सीमा या इसकी सबसे गंभीर त्रुटि यह है कि अनेक बार विचारक इस पद्धति को अपनाकर कल्पना की उड़ान भरते हुए वास्तविकता से संबंधित तोड़ लेते हैं और इसी कारण उनके द्वारा प्रतिपादित विचार व्यवहारिक राजनीति से बहुत दूर होते हैं। उदाहरणार्थ प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक और मूर की यूटोपिया में ऐसे आदर्श राज्यों का चित्रण किया गया है जिनका इतिहास और मानव स्वभाव के तथ्यों से तनिक भी संबंध नहीं है। इस प्रकार की आदर्शवादिता और दार्शनिकता के परिणाम उपयोगी नहीं होते हैं और इसलिए ब्रंटशली कहते हैं कि यह पद्धति कोरी सिद्धांतिक है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं रहता है। सिले और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इसी आधार पर इस पद्धति को अशुद्ध और त्याजत्य माना है। सावधानी उपरोक्त त्रुटि के बावजूद दार्शनिक पद्धति के सीमित रूप में अपनाना लगभग अनिवार्य है। यह सत्य है कि हमारा मुख्य लक्षण आदर्श राज्य की प्राप्ति है, किंतु ऐसा करते समय हमें यथासंभव क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है के साथ समन्वय रखना चाहिए। 20वीं सदी के लेखकों विटगेंस्टीन, अदेर और राइल ने ठीक रूप से विचार व्यक्त किया है कि यह पद्धति उपयोगी हो सकती है यदि हम केवल आदर्शों में ही उलझकर न रह जाएं। अन्य पद्धतियां राजनीति विज्ञान की उपयुक्त 5 प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे सदृश पद्धति, वैधानिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, जीवशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, मनोविज्ञान पद्धति आदि। विषय के कुछ विद्वानों विशेषतया गॉर्नर का विचार है कि इन्हें पद्धति न मानकर दृष्टिकोण मात्र ही समझा जाना चाहिए। इन्हें राजनीति विज्ञान की गौण पद्धतियां कहा जाए या मात्र दृष्टिकोण, यह तथ्य है कि एक विषय में इनका सीमित प्रयोग ही किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय की प्रवृत्ति इन्हें पहले की तुलना में अधिक महत्व देने की है। अन्य पद्धतियों की श्रेणी में निम्नलिखित पद्धतियों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सदृश पद्धति, एनोलॉजिकल मेथड। गिलक्रिस्ट ने सादृश्य पद्धति की विस्तृत चर्चा की है और इस पद्धति का व्यापक प्रयोग ब्रंटशली तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है। स्पेंसर ने इस पद्धति को अपनाते हुए राज्य और मानव शरीर के बीच कितने ही सदृश ढूंढे और इन सदृश्यों के आधार पर अपने सावयव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजनीति विज्ञान में यह पद्धति उपयोगी रही है, लेकिन सादृश्य का एकरूपता की सीमा तक नहीं पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सादृश्य प्रमाण नहीं है, यह तो एक संभावना का सूचक मात्र है, निश्चितता का नहीं, इसलिए सादृश्य पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वैधानिक पद्धति, ज्यूरिडिकल मेथड। विश्लेषणात्मक न्यायविदों बिलोबी, डिगविट, लेवांड, जेसलॉन्डर्स, कॉम्बोद, थेकर आदि के द्वारा राजनीतिक अध्ययन में वैधानिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया। यह प्रणाली राज्य को एक वैधानिक इकाई मानती है जिसका कार्य कानून बनाना और उन्हें लागू करना है। इस प्रणाली के अनुसार राज्य वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का समूह है, परंतु इस प्रणाली में यह दोष है कि इसके द्वारा उन सामाजिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो संविधान, कानून तथा मानवीय संबंधों के आधार रूप में कार्य करती हों। सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी या आंकड़े संबंधी पद्धति भी राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग की शक्ति, जन्म, प्रचार आदि विषयों का इस पद्धति के आधार पर बहुत अधिक श्रेष्ठ ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशेष विषय के संबंध में आंकड़े तैयार किए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उन आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग एक नितांत स्वतंत्र पद्धति के रूप में नहीं, वरन ऐतिहासिक, तुलनात्मक या दार्शनिक पद्धति के सहायक रूप में ही किया जा सकता है। आंकड़े तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं जबकि उनके साथ विवेक और तर्क का सही रूप में प्रयोग किया जाए। जीवशास्त्रीय पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड। इस पद्धति के समर्थक राज्य को एक सामव्य मानते हैं और राज्य के संगठन तथा विकास के साथ एक प्राणी वैज्ञानिक इकाई की समानता स्थापित करते हैं। इस पद्धति को प्रमुख रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, वर्म्ज स्कैफल, ड्रकिम और गम प्लाविज के द्वारा अपनाया गया है। इस पद्धति की मुख्य त्रुटि यह है कि इस पद्धति के अंतर्गत अपनाई जाने वाली मनोरंजक सदृशताएं हमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती। वस्तुतः प्राणी वैज्ञानिक तुलना वास्तविक होने की अपेक्षा सतही हो सकती है और इससे भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 10वां, समाजशास्त्रीय पद्धति, सोशियोलॉजिकल मेथड। समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना जाता है जिसमें समाज का निर्माण करने वाले व्यक्तियों जैसे गुण होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की तरह राज्य के जीवन का भी विकास के नियमों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यह वास्तव में एक स्वतंत्र पद्धति नहीं वरन एक दृष्टिकोण मात्र है और इसमें भी प्राणी वैज्ञानिक पद्धति के दोष निहित हैं। 11वां मनोवैज्ञानिक पद्धति साइकोलॉजिकल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वभाव और समूहगत स्वभाव की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से आधुनिक काल के राजनीतिक वैज्ञानिकों और समनर के द्वारा किया गया है। चुनाव, जनमत, राजनीतिक दल आदि का अध्ययन करने में यह पद्धति विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। वर्तमान समय में राजनीतिक अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति को विशेष उपयोगी समझे जाने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पद्धति का प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयां हैं। राजनीति विज्ञान की आधुनिकतम पद्धतियों में अनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारवाद का उल्लेख सबसे अधिक प्रमुख रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड। वर्तमान समय में समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इस बात पर बल दिया जा रहा है कि समाज विज्ञानों में पदार्थ विज्ञानों के साथ सादृश्यता स्थापित कर पूर्ण अंशों में विज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसी दिशा में एक चरण है। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की प्रेरणा ग्राहम वालस, वेंटले, मॉरियम, कैटलिन आदि से मिली है और राजनीतिक विज्ञान में इनका प्रमाणिक निरूपण ऑनर्ट ब्रेटश ने किया है। राजनीतिक विज्ञान के कुछ आधुनिक लेखकों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करने की चेष्टा की गई है, जो निम्न प्रकार है। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में, विज्ञान पद्धति से माना जाता है विषय वस्तु से नहीं, यह व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं आंकड़ों की व्याख्या से उत्पन्न होती है। आर एन थॉलेस के शब्दों में, वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रविधियों की एक व्यवस्था है, जो कि विभिन्न विज्ञानों में अनेक बातों में विभिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति को ऐसे नियमों, क्रियाओं और क्रियाविधियों का समूह कहा जा सकता है जिनका प्रयोग लक्ष्य, वैज्ञानिक विश्लेषण और अन्वेषण के आधार पर विषय के अध्ययन से संबंधित पूर्वाग्रहों और त्रुटियों को दूर करने तथा मूल्य निरपेक्षताओं की स्थिति को अपनाकर उसे अधिकाधिक विशुद्धता और वैज्ञानिकता प्रदान करना है। वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण। अर्नाल्ड ब्रेशट को वैज्ञानिक पद्धति का अधिकाधिक प्रवक्ता कहा जा सकता है। ब्रेशट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट में वैज्ञानिक पद्धति के 11 लक्षण बतलाए हैं, जिन्हें वह वैज्ञानिक पद्धति के चरण स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कहता है। वैज्ञानिक पद्धति के ये चरण निम्न हैं। पर्यवेक्षण, पहला पर्यवेक्षण, राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों तथा क्रिया प्रतिक्रियाओं आदि का इंद्रियों द्वारा पर्यवेक्षण करते हुए मान्यताओं का निर्धारण करना। दूसरा वर्णन, जिसे पर्यवेक्षित किया गया है उसका स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित वर्णन तथा उस वर्णन के आधार पर सही एवं पर्याप्त को निर्धारित करना। तीसरा मापन, जिन घटनाओं या तथ्यों को मापा जा सकता है उन्हें विशिष्ट पर्यवेक्षण के अंतर्गत मापना। चौथा स्वीकृति, पर्यवेक्षण, वर्णन एवं मापन द्वारा प्राप्त तथ्यों या वास्तविकता को अस्थायी रूप से स्वीकार करना। पांचवा आगमनात्मक सामान्यीकरण, स्वीकृत व्यक्तिगत तथ्यों का तथात्मक परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करना। छठा स्पष्टीकरण, स्वीकृत व्यक्तिगत तथ्यों या आगमनात्मक ढंग से प्राप्त किए गए तथ्यात्मक सामान्यीकरणों को कार्यकरण कारण के संबंध में रूप में स्पष्ट करना। सातवां तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण, आगमनात्मक ढंग से प्राप्त किए गए तथ्यात्मक सामान्यीकरणों को इस प्रकार स्पष्ट करना कि संभावित पर्यवेक्षणों या पूर्व स्वीकृत तथ्यों के अर्थ या लक्षण स्पष्ट हो जाएं। आठवां परीक्षण, उपर्युक्त चरणों के आधार पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का परीक्षण करना जिससे उसकी विश्वसनीयता एवं औचित्य का निर्णय किया जा सके। नौवां संशोधन सुधार, जब पर्यवेक्षण, मापन और परीक्षण के आधार पर प्राप्त किए गए आगमनात्मक सामान्यीकरण असंगत प्रतीत हों तो उन्हें नवीन परिणामों के आधार पर संशोधित परिवर्तित करना। दसवां पूर्वानुमान, वैज्ञानिक विधि से प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य की घटनाओं और दशाओं के संबंध में पूर्वानुमान व्यक्त करना। 11 अस्वीकृति, जो पूर्व धारणाएं और विवरण वैज्ञानिक पद्धति से पुष्ट नहीं हुए हैं उन्हें अस्वीकार करना या त्यागना। वैज्ञानिक पद्धति के उपयुक्त चरणों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली में जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं सर्वेक्षण प्रणाली, द सर्वे मेथड, केस प्रणाली, द केस मेथड, प्रश्नावली प्रणाली, द क्वेश्चनेयर मेथड, साक्षात्कार प्रणाली, इंटरव्यू मेथड, सोशियोमेट्री, जनमत मतदान, पब्लिक ओपिनियन पोल, अंकशास्त्रीय प्रणाली द स्टैटिस्टिकल मेथड आदि। राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की सीमाएं या कठिनाइयां। यद्यपि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को अधिकाधिक सीमा तक अपनाने की निरंतर चेष्टाएं की जा रही हैं, लेकिन इस विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किए जाने की सीमाएं हैं और इस संबंध में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। व्यवहारवाद और राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के एक प्रवक्ता डेविड ईस्टर्न ने अपने उत्तर व्यवहारवादी लेखन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की सीमाओं को स्वीकार किया है। इस प्रसंग में कुछ कठिनाइयां और सीमाएं निम्न हैं। पहला, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन विषय की जटिलता। प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय बहुत अधिक जटिल, बहुत अधिक अनिश्चित और निरंतर परिवर्तनशील है। अतः उसमें पदार्थ विज्ञानों की भांति कार्यकरण में पूर्णतः निश्चित संबंध स्थापित कर सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विज्ञान में केवल अनुमान ही व्यक्त किए जा सकते हैं, निश्चित सिद्धांत नहीं। दूसरा, अध्ययनकर्ता की विचारात्मकता और भावात्मकता। पदार्थ विज्ञानों का अध्ययन विषय पदार्थ होने के कारण व्यक्ति वैज्ञानिक तटस्थता के साथ अध्ययन करते हुए सत्य की प्राप्ति की चेष्टा कर सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समाज और व्यवस्था का सदस्य होता है जिसका उसके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। उसके अपने विचार, भावनाएं, हित और दृष्टिकोण होते हैं, अतः उसके लिए पूर्ण निर्लिप्तता और तटस्थता का भाव अपना पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तीसरा, प्रमुख धारणाओं के अर्थ की अनिश्चितता। राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय से संबंधित प्रमुख धारणाओं का अर्थ की वैसी निश्चितता प्राप्त नहीं है जो वैज्ञानिक पद्धति का आधार बन सके। उदाहरणार्थ, राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न अध्ययनकर्ताओं द्वारा कानून, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्र आदि विभिन्न शब्दों का प्रयोग अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग अर्थों में किया जाता है। इन शब्दों का ऐसा कोई आशय नहीं है जिस पर सभी सहमत हों। चौथा, राजनीतिक विज्ञान मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता मूल्य निरपेक्षता है, परंतु राजनीतिक कार्यों, व्यवहारों और घटनाओं का संबंध व्यक्ति, समूह और समाज से होता है। वे मानवीय दृष्टिकोण, आवेगों और भावनाओं से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए होते हैं, अतः उनके संबंध में मूल्य निरपेक्षता को अपनाना संभव नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उचित होने वाले व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता की स्थिति को अपनाने की चेष्टा की, लेकिन कुछ ही वर्षों में स्पष्ट हो गया कि ऐसा कर पाना संभव नहीं है और पुनः मानवीय मूल्यों को राजनीतिक अध्ययन का आधार बना लिया गया। चार्ल्स ए बियर्ड लिखते हैं कि राजनीति का विज्ञान असंभव है, अथवा यदि संभव है तो अवांछनीय है। यह असंभव इसलिए है कि वैज्ञानिक पद्धति राजनीति शास्त्र की घटनाओं के छोटे एवं अपेक्षाकृत महत्वहीन भाग पर लागू की जा सकती है, और अवांछनीय इसलिए है कि मापन और वर्गीकरण गतिशील वास्तविकताओं को अस्पष्ट एवं अयथार्थ बना सकते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं, और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांत सामने आए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, निर्णय प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत, मतदाताओं के व्यवहार से संबंधित सिद्धांत और संयुक्त सरकार बनाने से संबंधित सिद्धांत आदि। इसके अतिरिक्त इन सिद्धांतों की रचना करते समय मॉडलों का भी प्रयोग किया जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में वैज्ञानिकता अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। निष्कर्ष, उत्तम पद्धति। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी पद्धतियां उपयोगी हैं। यह समझना नितांत गलत होगा कि इन पद्धतियों में कोई पारस्परिक विरोध है। वास्तव में ये परस्पर विरोधी होने के स्थान पर एक दूसरे की पूरक है, और ये एक दूसरे की भूलों की सुधरती हुई तथा कमियों को दूर करती हैं। ये सभी पद्धतियां अन्योन्याश्रित हैं, और इन पद्धतियों का उसी समय सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है जबकि इन पद्धतियों का प्रयोग साथ-साथ किया जाए। सिद्धांतों को जीवन की यथार्थ तथ्यों की कसौटी पर कसना आवश्यक है, और जीवन के तथ्यों का सही मूल्यांकन सिद्धांतों के प्रकाश में ही संभव है। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए यथार्थ तथा आदर्श का मधुर सम्मिश्रण आवश्यक है। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है कि सच्चे इतिहासवेत्ता को दर्शन शास्त्र का महत्व समझना चाहिए, और एक सच्चे तत्ववेत्ता को इतिहास से परामर्श लेना चाहिए। इतिहास के प्रयोग तथा घटनाओं को आदर्शों के प्रकाश में चमत्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए सबसे उत्तम पद्धति में ऐतिहासिक तथा दार्शनिक विधियों का सम्मिश्रण होना चाहिए।